آپ بورنگ کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ کیونکہ جو کنویں کا پانی آتا ہے اس میں تو مٹی بھی آتی ہے، پھر بھی آپ وہی پیتے ہیں. ہمارے یہاں پر جل دو طرح کا مانا گیا، ایک اہنسک اور ایک شدھ. جو اہنسک اور شدھ ہو وہی شریشٹھ ہے، جو اہنسک نہ ہو اور ماتر شدھ ہو اس کو ہم نہیں اپیوگ میں لیتے. جتنی گہرائی سے پانی آئے گا اتنا شدھ تو ہوگا، لیکن اس میں اہنسا کا پالن نہیں ہو سکے گا. اس کی جیوانی جب چھان کر کے ہم اسی ریسورس تک جہاں سے کہ ہم نے وہ پانی لیا ہے وہاں تک نہیں پہنچا پائیں گے، اس لیے اس میں جیو رکشا کا کہیں کوئی پالن نہیں ہو پاتا ہے. اور کنویں کے پانی سے جہاں سے ہم نے پانی لیا ہے اسی تک ہم اور اس جیوانی کو بھیج سکتے ہیں. اس لیے اہنسا کی درشٹی سے دیکھا جائے تو وہ پانی ہی، کنویں کا پانی ہی شریشٹھ ہے. آچاری مہاراج نے ابھی اس میں ڈھیل نہیں دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک چلے تب تک جو ہے وہ اپن کنویں کا پانی ہی لیں گے، جہاں پر کنواں نہیں ہے وہاں پر جانے کی آوشیکتا نہیں ہے، ہم اپنے کو سیمت کر لیں گے. لیکن ہم اس چیز کو آگے آنے والی پیڑھی کو ہم کیا سندیش دیں گے کہ کل تک کنویں ہوتے تھے اور آج دھیرے دھیرے جب ہم اور ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں ہم اس چیز کو بھی دھیان میں رکھ رہے ہیں. اب تو ایک نئی چیز جو سننے میں آئی ہے، شروع بھی ہو گئی ہے، کہ گورنمنٹ بھی اس چیز کو کہہ رہی ہے کہ اپنے یہاں پر کچھ اس طرح کے استھان بنائیں آپ جن میں کی بارش کا جل اور اکٹھا ہو. تو آچاری مہاراج نے اس کی پرمیشن دے دی ہے کہ جو بارش کا جل نیچے وشیش روپ سے اکٹھا کیا جاتا ہے اس میں جیوانی کی سویدھا ہے، تو ہم اس سے پانی کو کھینچ کر کے اور اسی میں پانی کے سورس میں پہنچا سکتے ہیں. اس لیے وہ پانی تو ہم پھر بھی لے لیں گے. بہتا ہوا ندی کا پانی بھی لیا جا سکتا ہے، کنویں کا پانی اور بہتا ہوا ندی کا پانی. اور یہ جو تیسری چیز ہے کہ واٹر ٹینک جو ہے نیچے بنائے جائیں اور اس طرح سے شدھ جس میں کہ جیو راشی اتپن نہیں ہوتی، مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ ان کے یہاں بنا ہوا ہے، آپ نہیں تو بتایا تھا، ورشوں سے بنا ہوا ہے، اس کو ذرا ساودھانی پوروک اگر ہینڈل کرتے ہیں تو کوئی جیو راشی اس میں پیدا نہیں ہوتی اور ہم شانتی سے اپنا پانی تو وہی ہے، وہ جو وہاں ہے وہ یہاں ہے، آپ نے یہ کھولا سو وہ یہاں آ گیا، یہ بند کیا ادھر سے کھولا سو ادھر چلا گیا، وہی پانی چلا گیا. اگر اپن اس طرح وچار کریں تو بہت مشکل ہے کہ اپن اس کو ٹھیک مان پائیں گے. جو واٹر ورکس سے فلٹر ہو کر کے اور واٹر سپلائی ہوتی ہے نل میں، اس پانی کے ساتھ کیا جیوانی اور کیا ہم پالن کریں. اس لیے ابھیشیک کیا مہاراج جی وغیرہ بھی بورنگ کا پانی لینے لگے کچھ سنگھوں میں، لیکن آچاری مہاراج نے ابھی پرمیشن نہیں دی، تو ہم اس کو دوشی بھی نہیں مان رہے ہیں کہ جو لوگ لے رہے ہیں وہ دوشی ہیں، پر ہم نہیں لے رہے ہیں تو ہمیں اپنا کارن بتانا پڑے گا کہ بھائی ہم اس لیے نہیں لے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو لے رہے ہیں وہ گڑبڑ ہے، کل کے دن ہو سکتا ہے کہ دو پانچ دس سال کے بعد اور یہ استھتی آئے کہ آچرشی کو پرمیشن دینی پڑے. دیکھیے ہے ہی نہیں، یہ کہنا بہت آسان ہے، کیوں نہیں ہے اس پر وچار کرنا چاہیے. اپنی سویدھا کے لیے نا، یہ بتاؤ اپنی سویدھا کے لیے، واستوکتا تو نہیں ہے. اپن لوگ اسی طرح سے جو ہے دھیرے دھیرے کرتے جائیں گے تو ایک دن ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ ہم اس کا بھی تو تھوڑا سا وچار کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اور سب دنیا کی چیزوں کے لیے اتنا ایفرٹ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیز پانے کے لیے، اور اس کے لیے نہیں کر سکتے. اپنی ایک پرمپرا جو کہ خراب نہیں تھی، اچھی پرمپرا تھی، اس کو ہم مینٹین نہیں کر سکتے. جبکہ سائنس کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی آیوڈین کی کمی ہو رہی ہے اس کا کارن ہے کہ واٹر میں آیوڈین کی دھیرے دھیرے جو ہے پرسنٹیج گھٹتی جا رہی. کیوں گھٹتی جا رہی؟ 60-70 فیٹ سے زیادہ نیچے کا پانی نکالا جائے تو اس میں آیوڈین ہوتی نہیں. 70 فیٹ تک کے واٹر میں آیوڈین ہوتی، پھر آیوڈین کھانے کے الگ سے ضرورت نہیں پڑتی. تو جو لوگ کنویں کا پانی پیتے ہیں ان کو آیوڈین کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ 60-70 فیٹ تک کا ہی پانی کنویں میں نکالا جا رہا ہے، یہ سائنس کہہ رہا ہے. और हम और गहरे से 100-100 200-200 फीट नीचे से पानी निकाल रहे हैं, उसमें से तो आयोडीन है ही नहीं, तो हमें एक्स्ट्रा आयोडीन लेना पड़ रही है। हम अपने हाथ से जो है इस तरह करें और फिर कहें कि नहीं क्योंकि मजबूरी है, तो मजबूरी कह करके अपन उस चीज को इग्नोर नहीं करें। वास्तविकता तो वास्तविकता है, हमें करना तो ये चाहिए था, हम कर नहीं पा रहे हैं, ये हमारी अपनी कमी है भैया। महाराज जब आप आपस में महाराज से नमोस्तु करते हैं दोनों महाराज, तो फिर पिछी हाथ में क्यों लेते हैं, जबकि पिछी तो जो है जमीन को साफ करने के काम आती है। अरे वाह, बच्चों ने लिख दिया देख करके कि महाराज ये करते रहते हैं, ये झाड़ू नहीं है बाबा, ये झाड़ने के लिए नहीं है, ये तो जो है संयम का उपकरण है, संयम के पालन के लिए, किसी जीव का घात ना हो जावे। छोटे छोटे जीव जो दिखाई नहीं पड़ते हैं वो भी इस मयूर पिच्छी जो कि अत्यंत मुलायम होती है, इतनी सॉफ्टनेस है इसके अंदर, इतनी सुकुमालता है, दो गुण हैं, वैसे तो पांच गुण इसके हैं। ये धूल को ग्रहण नहीं करती, ये पसीनों को ऐसे शरीर पर लगा देने के बाद ये पसीने को ग्रहण नहीं करती, ये बहुत हल्की होती है, पूरी की पूरी इतनी दिख रही है आपको, लगता होगा कि बहुत वजन है, तौल के देखें तो वजन निकलेगा इसका, लेकिन चींटी चली जा रही है उसके ऊपर, ऐसी रख देवे चींटी आसानी से नीचे से मूव कर जाएगी, उसको बिल्कुल वेट नहीं लगेगा, वेटलेस। ये इतना इसका जो नीचे का पोर्शन है वो इतना कहना चाहिए विलक्षण है, ये कह लीजिए, और डेलिकेट तो इतना है कि अगर आपने जरा सा जोर से रगड़ दिया नीचे तो ये सब खराब हो जाएगी, इसलिए केयरफुली हैंडल इसको, जो जो हैंडल करेगा तो केयरफुल हैंडल करना पड़ेगा इसको, ये सामान्य चीज। और मृदु इतनी है कि इसका एक रेशा निकाल करके और आंख में भी घुमा दिया जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी, इतनी सॉफ्टनेस इसके भीतर होती। तो ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि क्यों अपने पास रखते हैं, ये प्रतीक है संयम का, ये जिसके हाथ में होती है मालूम पड़ता कि वो संयमी है, वो अपना जीवन पूरा संयम पूर्वक सावधानी, संयम का मतलब अनुशासन, सावधानी, तो अनुशासन पूर्वक सावधानी पूर्वक लापरवाही से नहीं जिएगा, वो सावधानी पूर्वक जिएगा, इसका प्रतीक। इसलिए आपस में जब मुनि मुनि महाराज जी प्रणाम करते हैं तो एक दूसरे संयमी को प्रणाम कर रहे हैं, तो संयम के उपकरण के साथ ही प्रणाम करते हैं हम। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी आरती उतारने से पहले हमें हाथ में पिची दे दो फिर बाद में आरती उतारना, लेकिन कई लोग जो है वो उल्टा करते हैं, पिची तो पहले रखी रहने देते, पहले आरती उतार लो, आहार हो गए फिर आरती उतारो फिर पिची देंगे, अभी पिची तो हाथ में आई नहीं है। जब हाथ में आ जाए पूरा संयम का उपकरण हाथ में आ जाए फिर उसके बाद जो है आप आरती उतारो इस वेश की, ये वेश जो है इसके बिना अधूरा है, पिची कमंडलू के बिना ये कभी अपने से अलग नहीं की जा सकती, कमंडल तो फिर भी एक बार कोई और हाथ में पकड़ सकता, ये नहीं कि हमारी ये पकड़ के ले चलो आप, ऐसा नहीं कह सकते, ये अपने हाथ में ही रखना पड़ेगी, ये उपकरण है, ये इसको संयम का प्रतीक मानते हैं। इसलिए जब भी प्रणाम वगैरह करते हैं, हमारे पास और क्या है, लिखा है कि श्रावक के पास द्रव्य है, भगवान की पूजा भक्ति करता है तो श्रावक खाली हाथ नहीं करता, वो कुछ ना कुछ समर्पित करता है, और मुनि महाराज भी खाली हाथ नहीं करेंगे, उनके हाथ में यह संयम का उपकरण इसी को हाथ में लेकर के भगवान की वंदना इत्यादि या आपस में नमस्कार इत्यादि करेंगे। इसलिए है ये, इसको आप ये नहीं मानिएगा कि ये जमीन साफ करने वाली चीज है, नहीं, इसके लेने वाला जमीन साफ नहीं करता, अपने भीतर की जमीन साफ करता है, बाहर की वाली जमीन नहीं है ना। नीम कड़वा होता है या आदमी की जिह्वा और नीम का रिश्ता, आपने बहुत आध्यात्म की बात पूछ ली, लगेगा तो प्रश्न बहुत सामान्य सा, वास्तव में देखा जाए तो हम जो भी खट्टा मीठा अनुभव करते हैं वो ज्ञान के माध्यम से अनुभव करते हैं, वास्तव में तो हमारा अपना ज्ञान है जो खट्टे मीठे का हमें अनुभव देता है। नीम खट्टी है वो नीम कड़वी है ये तो है ही, लेकिन हमारे अंदर उसको ज्ञान में वैसा ही कहना चाहिए अनुभव करने की सामर्थ्य है, इसलिए जो है हम उसका वैसा अनुभव करते, तो दोनों ही सही है कि नीम भी कड़वी है और जो हमारे जिह्वा का वो विषय बनती है
ज्ञान का विषय बनती है तो हमें उसकी कड़वाहट का अनुभव होता है। तो जैसे दो चीजें हम आंख से देखते हैं या चेतना से देखते हैं, तो भैया हम आंख से भी देखते हैं क्योंकि आंख माध्यम बनती है, और वास्तव में तो हम अकेली आंख से थोड़ी देखते हैं। अच्छा देखो, जब चेतना निकल जाती शरीर में से तब आंख से दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो कोई कहे कि हम आंख से नहीं देखते, हम तो आत्मा से देखते हैं, तो फिर आंख बंद कर लो देखो, तो कहते ये भी मामला गड़बड़ है। तो कहते दोनों ही चीज है, आंख से भी देखते हैं और चेतना से भी देखते हैं, दोनों आंख। इसी तरह ये भी है। कृपया बताएं कि आपकी कविता सिद्ध नाम सत्य के भावपूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक समझाएं। ये मेरी कविता नहीं है भैया, ये गुना वाले एक वकील साहब हैं, उनकी है, मैं सिर्फ सुनाता हूं। आप पैसा मत समझिए, कन्फ्यूज मत करिए कि वो मेरी है, मैंने नहीं लिखी उसको, पर उसके भाव बहुत अच्छे लगते मुझे, इसलिए सुना देता हूं कभी कभी। मंदिर जी की रक्षा हेतु या व्यवस्था हेतु बोलना चाहिए या नहीं? यदि व्यवस्था में कमी आ रही हो, या ये समझें कि जिसकी करनी जिसको करनी वो जानेगा, या जैसा करेगा वैसा भरेगा, ऐसा मानकर चुपचाप बैठें? भैया ऐसा है कि दो लोगों के अलग अलग काम हैं, साधु जनों के अलग काम हैं, श्रावक जनों के अलग काम हैं। तो अगर मंदिर में कोई अव्यवस्था होगी तो श्रावक का फर्ज है, वो अपना फर्ज करेगा। महाराज का फर्ज क्या है? इतना ही कि श्रावक को अपने कर्तव्य का उपदेश देना, बस। देखो श्रावक को अपने धर्मायतन की अच्छी सेवा करनी चाहिए, उसे अच्छे से बनाना चाहिए, उसमें भगवान को ठीक से विराजमान करनी चाहिए, जैसे प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है जैसा होना चाहिए वैसा। ये उपदेश देना ये तो काम है, लेकिन अपने हाथ से और हम कुछ करने लगे या कि किसी से करवाने लगे तो बात तो वही हो गई, स्वयं करना या दूसरे से करवाना कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा कहेंगे तो बताइएगा फिर क्या स्थिति बनेगी। तो हमने बलात् उससे जबरदस्ती जो है उसको ऐसा करवा दिया, तो उसका उसका अपने जिम्मे भी आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, मानना चाहिए। देखो नहीं आएगा ऐसा नहीं कह सकते, आएगा तो, अब आप करते हैं ये बात अलग है, पर मानना तो पड़ेगा कि आएगा, उसका दोष तो अपने लिए आएगा, इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो फिर सबके लिए करना चाहिए वैसे ही कि खड़े हो जाओ, फुर्सत है, सबसे ज्यादा फुर्सत तो महाराज ही है, उनके जिम्मे सब सौंप दो, उनके जिम्मे ईंट ईंट गारा चूना को हिसाब सौंप दो, भी बनवात ने खड़े रहे, अपन को फुर्सत ही नहीं है। श्रावक को, श्रावक का काम था भैया, ये हमारा नहीं, हमारा काम सिर्फ ये है कि उपदेश देना कि देखो अच्छा धर्म स्थल बनाना चाहिए जिससे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, जिनबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, मंदिर जाना चाहिए, जहां मंदिर नहीं है वहां पर बढ़िया से भव्य जिनालय बनाना चाहिए, ये उपदेश दे सकते हैं, इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं कह सकते हम, हमारी अपनी सीमाएं हैं भैया, इसलिए। और कोई ऐसा नहीं है कि हम उन चीजों का निषेध कर रहे हों, हम अपनी सीमा में रहें और श्रावक जो है उस चीज को करे तो बहुत अच्छा रहता। एक दूसरे के काम एक दूसरा करने लगे तो फिर कैसे काम बनेगा, अव्यवस्था नहीं फैलेगी। मैनेजिंग के कोर्सेज में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि जिसका जो काम है वो अपना उसको फुली डिबोट होकर के उस काम को करे, अगर दूसरे के काम में इंटरफियर करेगा तो ना वो कर पाएगा ना ये स्वयं ही कर पाएगा, काम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जनवरी में पीलिया हुआ, पूरे शरीर और आंखें पीली हो गई, 2 महीने तक पीलापन नहीं गया, इसके बाद भी हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्या आप कोई समाधान दे पाएंगे? ठीक है आपने पूछा है तो समाधान तो यही है कि जो भी रोग शोक व्याधि होती है उसका कारण क्या है, बाह्य कारण जो भी हो, लेकिन अंतरंग कारण तो हमारे असाता कर्मों का उदय ही होता है। हमें असाता कर्म के उदय से, वादिराज महाराज को असाता कर्म के उदय से कुष्ठ रोग हो गया, इतने बड़े मुनि महाराज थे, उधर समंतभद्र स्वामी को अपने असाता कर्म के उदय से भस्मक व्याधि हो गई, उन्होंने क्या उपाय करा? उन्होंने एक ही उपाय करा, भगवान की ठाट बाट से पूजा और भक्ति करी, और भगवान की भक्ति से हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, जिससे कि हमारे खोटे कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। एक ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है भैया, जो भी विपत्तियां, जो भी हमारे शारीरिक बाधाएं आती हैं, उन सब का एक ही कारण होता हमारे पूर्व संचित असाता कर्म, और उन्हीं को कम करने के लिए हमें पूजा पाठ धर्म ध्यान ये सब का आलंबन लेना चाहिए। इतना ही मैं आपको सलाह दे पाऊंगा। हम जब आठवीं कक्षा में पढ़ते थे तो हमारा एक दोस्त था, वो हमारे घर पढ़ने आया करता था। वो एग्जाम में मेरे से ज्यादा नंबर ना ला सके, इसलिए मैं एग्जाम के दिन में उसकी नोटबुक छुपा दिया करता था, जिससे वो पढ़ ना सके। आज मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है, इसका पश्चाताप करना चाहता हूं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, आधी गलती तो सुधर गई। स्वीकार कर लेने से आधी गलती सुधर जाती है। जब अपन ने एक तो आत्म साक्षी पूर्वक स्वीकार कर लिया, और फिर आपने तो गुरु की साक्षी पूर्वक, देव की शास्त्री साक्षी पूर्वक और सबकी साक्षी पूर्वक स्वीकार कर लिया कि मेरी गलती है। बहुत कम असर हो गया उसका। अब थोड़ा सा इतना काम और करें कि वो जो अपन ने उस समय ज्ञानावरणी कर्म बांध लिया है, दूसरे के ज्ञान में बाधा डाली है, तो उसके लिए अपने उस कर्म को काटने के लिए अच्छा है कि आप कभी भी ऐसा ना करें, ऐसा संकल्प ले लें और किसी व्यक्ति को पुस्तक इत्यादि देकर के मदद करें, या कि मंदिर जी में शास्त्र इत्यादि भेंट करें। कोई को पुस्तक नहीं खरीदने के पैसे नहीं है, उसे हम पैसे से मदद देकर के कि आप पढ़ो, हम तो हमने हमसे तो उतना नहीं बनता पढ़ते, और हमें पुस्तक इत्यादि भेंट करने में मदद करना चाहिए। और हमेशा ज्ञान की प्रशंसा करना चाहिए, जब भी कोई मिले तो उससे कहना कि कभी ऐसा मत करना, दूसरे के ज्ञान में बाधा नहीं डालना, उससे अपना ज्ञान ही घटता है, बढ़ता नहीं है कभी दूसरे के ज्ञान में बाधा डालने से। बहुत अच्छा है आपने स्वीकार किया इस चीज को, तो सबसे बड़ी चीज है। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि आचार्य श्री के दोनों शिष्यों शिक्षा दोनों की एक है, मतलब आचार्य श्री ने दोनों जन को शिक्षा एक दी, मेरा नाम लिखा। अच्छा, वर्तमान में दोनों बराबर आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं, और कोई भी कार्य करते हैं और उनके आशीर्वाद बिना नहीं करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ये दो महाराजों की, इसमें इन्होंने वो ही चार्ट बना के लिखा है, एक तरफ मेरा नाम लिखा है, एक तरफ हमारे और जो छोटे भाई हैं सुधा सागर जी, तो उनका नाम लिखा है। तो दोनों के बारे में लिखा है कि वो इस तरह करते हैं, ये इस तरह करते हैं। कृपया ये कहकर बात समाप्त न करें कि मेरे को इसमें कोई मतलब नहीं है, मेरा तो सिर्फ कल्याण करना कि गुरु एक और जैन आगम के अनुसार शिक्षा एक, रास्ते अलग अलग। आचार्य श्री की मौजूदगी समय पर दोनों लेते हैं, कृपया विस्तार से आप मेरे से इस बारे में अलग से मिल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको एग्जैक्टली क्या स्थिति है ये बता सकता हूं। आप कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों जन में, तो कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता। सब आदमी अपने अपने में यूनिक हैं। एक ही गुरु के शिष्य होने पर भी सबके अपने अपने धर्म प्रभावना करने के स्टाइल है, हाँ अपना अपना सोच है। कोई गुरुजी का नाम लेकर के अपने ढंग से काम कर सकता है, और कोई गुरु का नाम लेकर के गुरु के ढंग से काम कर सकता है। दोनों ही चीज है और दोनों ही मान्य है, इसलिए इससे ज्यादा और मैं और अधिक नहीं कहूंगा। मैं इस तरह के कंपैरिजन करने में विश्वास नहीं रखता। मैं तो ये सोचता हूं कि पता नहीं किसके माध्यम से किसका कल्याण होगा। आपका जिसके माध्यम से कल्याण हो जावे भैया, जो भी साधु बनता है वो अपने आत्म कल्याण के लिए बनता है, उसके संपर्क में जो आता है उसके प्रति भी वो उपकार ही करता है, उससे जितना बनता है वो अपने अपने ढंग से और दूसरे के भी कल्याण करने के लिए उपदेश देता है। जरूरी नहीं है कि जिन लोगों का मेरे से कल्याण नहीं हो उसका किसी और से नहीं होगा, और जरूरी नहीं है कि जिसका किसी और से नहीं हो उसका मेरे से नहीं होगा। पता नहीं, हम लोग तो सिर्फ इतना अहंकार कर लेते हैं कि जैसे हम ही दूसरे लोगों का कल्याण करते हो। नहीं भैया, सब अपना अपना कल्याण करते हैं, एक दूसरे को निमित्त बना लेते हैं। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि ऐसा अहंकार कभी नहीं करना कि मेरे द्वारा किसी का कल्याण होगा। नहीं, पता नहीं किसकी कौन सी बात से और किसको दिशा मिल जाए। मुख्य बात वो है, बाकी सब बातें तो बहुत बाहरी हैं और बाहरी छूट जानी है। श्रावक को तो अब जिससे ट्यूनिंग मिल जाए, देखो भैया सबका अपना, जिससे आपकी ट्यूनिंग मिल जाए आप उससे अपनी ट्यूनिंग मिला करके और अपना कल्याण कर लीजिएगा। हो सकता है कि मैं जो करता हूं वो कुछ लोगों को नहीं पसंद आता हूं, और हो सकता है कि मैं जो करता हूं वो कुछ लोगों को पसंद आता हूं, तो इसमें क्या चीज है? इसमें कोई कंपेयर करने की तो है ही नहीं। दो बेटे एक ही मां से पैदा हुए, दो ट्विंस, दोनों के अपने अपने विचार। एक मूंगफली खाता है तो दूसरे को भी खाना पड़ेगी क्या है? नहीं, वो तो तुम दोनों एक ही मां के बेटे हो इसलिए वो मूंगफली खाते, तुमने क्यों नहीं खाते तुम मूंगफली? और वो जो है वो फिर तो त्याग कर ही नहीं पाएंगे उनका। अगर किसी रस का त्याग है तो फिर दूसरे को भी करना पड़ेगा, और दूसरे का रस का त्याग नहीं है तो इनको आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक सा होना चाहिए सब। बिल्कुल, आप जितनी स्पीड से चलते हैं उतना ही उनको भी चलना चाहिए। आप धीरे क्यों चलते हैं? ऐसे कैसे करेंगे आप? क्या इस तरह कंपेयर कर सकते हैं आप सब चीजों में? नहीं भैया, आत्मा प्रभावनीय, बाह्य प्रभावना और अंतरंग प्रभावना में से कौन किसको प्रायोरिटी देता है ये सबकी अपनी स्टाइल है। पर दोनों तरह से धर्म प्रभावना का उपदेश आचार्य भगवंतों ने दिया है। कौन किसको प्रायोरिटी देगा ये उसके अपने नेचर पर डिपेंड करता है, इतना ही है। इसलिए ये जो आपने कंपैरिजन लिखा है मैं एक बार पढ़ तो लेता हूं।